لباس کے مسائل میں سے لباس الشہرہ، شہرت کا لباس 82، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے بنائیں تو پھر پہنے نا. اچھا کیا ہم شادیوں میں اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے؟ ہے سوال کسی کا کہ نہیں؟ اسکپ کر دیں اس ٹاپک کو، ہے نا ایشو کہ جب پہنے ہیں تو دکھائیں کیوں نہ، اور کیا کپڑے اس لیے پہنے جا سکتے ہیں کہ دوسرے دیکھیں اور کہیں کیا جوڑا پہننا اس نے. اور مجھے آج لگتا ہے کہ آج کپڑے کی قیمت تھوڑی، یعنی مٹیریل وائز اس کی قیمت تھوڑی ہے، بٹ وہ شہرت کا کپڑا ہے اس لیے وہ 8-10 گنا مہنگا ہے. آئیے تھوڑا سا اس پہ پڑھتے ہیں. شہرت اور ناموری کا لباس، جو شخص شہرت اور ناموری کی خاطر لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنا کر آگ میں ڈال دے گا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے آپ میرے ساتھ دہرائیں، اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مزلت یوم القیامت ثم الہب فیہ نارن. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اگلی حدیث کو بھی ساتھ ہی لیتے ہیں. شہرت جھوٹی انا یا جھوٹی عزت بنانے کے لیے اچھا لباس پہننے والا فریبی اور دغا باز ہے. ان اسما جاءت امرأة الى النبي فقالت ان لي درة فهل علي جناح ان تشبع من مال زوجي ما لم يعطني؟ فقال رسول الله المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری ایک سوت ہے. سوت کون ہوتی ہے؟ شوہر کی دوسری بیوی، سوکن کے معنوں میں. اگر میں اس کا دل جلانے کے لیے یہ کہوں کہ میرے خاوند نے مجھے فلاں فلاں چیز دی ہے حالانکہ اس نے مجھے نہیں دی، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی چیز نہیں وہ ظاہر کرے کہ اسے ملی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی فریب کے دو کپڑے پہن لے. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی چیز اپنی کوئی نہیں اور شو یہ کرنا کہ یہ اپنی ہے، تو یہ گویا کہ جھوٹ کے کپڑے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ان دونوں باتوں کو جمع کر کے تھوڑی سی بات کرتے ہیں شہرت کے لباس پہ. اب دیکھیے کہ اسلام ماڈریشن کا دین ہے. ہر وہ چیز جو کسی بھی حد میں ہوتی ہے نا، وہ اچھی ہوتی ہے. آپ اس واقعے کو شروع کیجئے ابلیس کے اس واقعے سے جس سے آج کا سیشن شروع کیا ہم نے، اور وہ کیا ہے کہ شیطان کا شارٹ ٹرم ہدف کپڑے اتروانے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے کیا نا، فسجدوا الا ابلیس. کیوں؟ ابا وکان من الکافرین. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سورہ بقرہ میں پیش کر دیا کہ سجدے کے حکم پہ سب سجدے میں چلے گئے لیکن ابلیس کھڑا رہا. اب امیجینیشن میں لائیے، مسجد کا ہال ہے اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، سب سجدے میں چلے جائیں لیکن ایک کھڑا رہے. کوئی شخص پیچھے سے اگر یہ منظر دیکھ رہا ہے تو اس کی نظر میں وہ سارے سجدے میں جانے والے برابر ہیں لیکن ایک شخص نمایاں ہے. ٹو بی پرومیننٹ ہونا، یہ شیطان کی سنت ہے. شیطان وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو سب کر رہے ہیں. اب آئیے اس کو واپس کپڑوں پہ. شادیاں آتی ہیں، عید آتی ہے، ہم ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں، بازاروں میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کپڑے آج موجود ہیں. آپ اپنی چوائس، اپنی سہولت، اپنی پسند ناپسند کے مطابق کچھ بھی خرید رہے ہیں. آپ کتنے کا خریدیں اللہ نے نہیں کہا آپ کو، کوئی حد نہیں ہے کہ $100 کا جوڑا تو ٹھیک ہے لیکن 200 کا مہنگا ہے، اور 50 کا ٹھیک ہے تو نہیں، ورنہ تو پھنس جاتے لوگ. اللہ تعالیٰ نے قیمتی کے لفظ کو اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ آپ پہ چھوڑا. آپ کی حیثیت ہے और आपका हौसला भी बढ़ा है अपने ऊपर लगाने का, हलाल कमाई है, ज़कात देते हैं, आप लगा लीजिए, 500 का भी बना लें, 1000 का बना लें, कुछ भी बना। लेकिन जो बात मना है वो ये है, आपने सोच से पहनना है कि मेरा सूट सबसे नुमाया हो जाए, ये जायज़ नहीं है। अपने लिए पहने, मुझे अक्सर आप ही लोगों में से कुछ की बात याद आती है कि अपने लिए पहनने का फायदा क्या, हम तो पहनते इसलिए कि दूसरे देखें। देखिए मैं अपने ऊपर लेकर आपको बताती हूँ कि कहीं भी जाना होता है ना, दर्स के लिए जाती हूँ मोमन, या कहीं भी कोई ऐसा मौका हो, तो मैं उस वक्त क्या सोचती हूँ कि मैं इस वक्त अल्लाह के नाम पे निकल रही हूँ। और उस जगह कई ऐसे लोग आए होंगे जो मुझे नहीं जानते, खास पे दर्स की बात करें, क्लासेस की तो बात छोड़ दें, वो तो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है। अब जब आप आउटसाइड दर्स में जाते हैं तो अमूमन हमारे माशरों में जो एक कल्चर है दर्सों का, वो आप सब जानते हैं, एक रिवायती कल्चर है। बाज़ सिस्टर्स सिर्फ इसलिए भी मस्जिदों में या दरसों में जाते हुए डरती हैं कि पता नहीं वहाँ क्या गेटअप चाहिए, हाल हुलिया, हमने तो आधी बाजू पहनी है, हम तो ऐसे फैशन में जा रहे हैं, तो वहाँ तो पता नहीं क्या होगा। अब जब वहाँ जाएं और अगला बंदा आपको उस रूप में देखे जिसमें आपको बाहर मर्दों में होना चाहिए, मतलब अगर मैं इस वक्त आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है मैंने निकाब उतारा है सिर्फ, अगर तो मैं निकाब भी पहन लूँ, कितने लोग हैं जो ईजी फील करेंगे मेरे यहाँ निकाब पहन के बैठने को, आप परेशान होंगे। चलिए आप तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है हम स्टूडेंट हैं, लेकिन कोई नया बंदा जो आपकी किसी दावत पे दर्स में आ गया, वो मुझे निकाब में देखकर सबसे पहले तो मेरे उसके बीच में क्या होगा, गैप आ जाएगा, वेवलेंथ नहीं मिलेगी। देखिए माने कि ना माने, बंदा अपने लाइक माइंडेड लोगों में फिट रहता है। डॉक्टर डॉक्टर्स में बैठ के खुश होते हैं, पायलट पायलट्स में बैठ के गुफ्तगू शनीद करते हैं, हम ख़वातीन हैं, हम अपने जैसी घरेलू ख़वातीन में खुश होंगे। सबसे पहले दाई और मधु के बीच में रेपो बनना चाहिए, अगले को दिखाएं हम आप ही जैसे हैं। और अगर दर्स देने वाला ऊपर चढ़ गया इतना, तो जो लेने आए ना वो कुर्सी से भी नीचे जाएंगे, ज़मीन फटे तो हम गिरे तो कभी बात नहीं सुनेंगे। पूरे दर्स में 100 बातें भी अच्छी होंगी ना, वो कहते रहेंगे हाँ मगर ये आप जैसे नेक लोग तो कर सकते हैं, हम जैसे गुनाहगार तो नहीं कर सकते। अब जब आपने गिल्ट दे दिया अपने सुनने वालों को, तो वो वहाँ से अमल की नीयत लेकर नहीं उठेंगे। इसीलिए फिर आज हमारे माशरे में ये दो रूही चीज़ आ गई, कुछ दीन के नाम पर मारूफ हो गए, हर शहर में उंगलियों पर गिने हुए लोग हैं जी, फलां बाजी, फलां अप्पा, फलां आंटी, फलां दर्स वाली, वो 20 साल से दे रही, वो 15 से दे रही, वो 10 से दे रही हैं। दीन घुलता मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों को दीन का वो एंगल नहीं देते कि जिसमें नए लोग तो आएं। और मैं यकीन करें, अल्लाह गवाह ना मुझे आपकी ज़रूरत है गवाही की ना सच्चाई की, मैं अपने सबसे अच्छे कपड़े, मैं अपनी सबसे अच्छी चीज़ मैं तब पहनती हूँ जब मैं दीन के लिए निकलती हूँ। मैं शादियों पे वैसे ही कोई नहीं बुलाता, हमें अब बुलाना भी पड़े तो मजबूरी में बुलाते हैं, क्या अब ना बुलाए तो माइंड करेंगे, वल्लाह ही लोग खुश नहीं होते अब हमें शादियों में देख के, ख़ानदान तो छोड़ नहीं सकता, तो बाकी जगह भी कुछ ऐसे ही हालात होते हैं। तो अब शादियों पे जाना ना जाना हमारा, हम बड़े चाव से भी कभी चले जाएं तो माहौल ही नहीं बनता, वैसे ही रो धो के लोग आते हैं। और कई लोग कहते हैं क्या फ़ायदा था इतना पहन के जाने की, नहीं मुझे तो फ़ायदा पहले ही हो गया था, मैंने तो अपने घर वालों के लिए पहनना था। क्या आप अपने बाप भाई शौहर बच्चों को दिखाने के लिए नहीं पहन सकती? नहीं देखा आपकी वहाँ 20-25 या 100-200 सिस्टर्स ने, दोस्तों ने, तो ना सही, अपने लिए पहनना होगा तो दुख नहीं होगा। दूसरी बात आप देखिए कि जायज़ चीज़ को नाजायज़ करके दिखाएंगे ना तो लोगों को बोझल दीन देंगे। जब अल्लाह ने कहा है पहन लो तो मैं आपके डर से क्यों ना पहनूं? जब अल्लाह ने कहा जेवर पहनो और है आपके पास, तो क्या उसका नसीब सिर्फ लॉकर्स है? मरने के बाद बच्चों ने रोती आंखों से खोलने हैं अम्मा जी की निशानियाँ, और अम्मा जी ने भी नहीं कभी पहने, बैंक का लॉकर ही याद आएगा जेवर के साथ, या तो दे दीजिए है तो पहनी है, सीधी सी बात है, बात वासे। तो जिसको आप अहम समझते हैं ना उसके लिए तैयार होते हैं। इमाम अली की बात आपने सुननी होगी कि हदीस के लिए जब एक जोड़ा पहन लेते थे दोबारा नहीं कभी किसी ने उनको देखा, एहतमाम से जब मस्जिद नबवी में और बाकी अपनी जगहों पे जाते थे खुशबुओं के हुल्ले होते थे, तो लोग कभी उनसे पूछते थे कि इतना एहतमाम किस लिए, तो कहते थे इस साहिब हदीस की शान के लिए, मैं लोगों को दिखाता हूँ कि ये इज्जत वाला काम है। तो मैं जब लोगों को शादियों के बारे में परेशान और हौलते और कांपते सारा कुछ करके भी कांपते देखूं, मैं कहती हूँ ये है इनके खुदा, सारी तैयारियों के बाद दिल डर रहा है कि हाय अभी भी हम उस महफिल के काबिल नहीं हुए, और दीन के लिए हो सकता है लहसुन प्याज वाले कपड़ों पे बाया पहन के हम घर से निकल आए। समझ रहे हैं बात को? जिसकी कदर करेंगे आप उसके लिए पहनेंगे। अब रह गई बात इसमें दिखावा की और शो। अब पहनना है तो कोई ना कोई तो देखेगा ही, इट्स ओके। बट अगर इसलिए पहनना है कि आज जरा ये पहनूं और जुलाऊं और दिखाऊं, ये है लिबास शोहरा। आपके भाइयों की शादियां होती हैं, हो चुकी, आपके बच्चों की होंगी, जो हैसियत है पहने। देखिए हम जब किसी के लिए पहनते हैं ना, नंबर एक हम उससे खुशी का इजहार करते हैं, दूसरी बात हम उसको इज्जत देते हैं। मैं इसको कैसे महसूस करती हूँ, एक और मिसाल ले लें। आप देखिए कि कोई घर आपके आता है मेहमान, आपने किसी को इनवाइट भी किया हुआ है और कोई आपकी इनविटेशन पे शाम को घर में आए, और घर में उसके आते ही आपके वो क्या देखे, घर बिखरा हुआ, टेबल के ऊपर डस्ट पड़ी हुई, चीजें फैली हुई, अजीब, तो आप एकदम क्या सोचेंगे, इसको तो पता भी था मैंने आना, तो इसने चीजों को ही नहीं हटाया, इसने आज भी डस्टिंग नहीं की। हो सकता है उसका घर आगे पीछे इससे भी गंदा ही होता हो, लेकिन वो आपके आने पे इस लेवल पे कर गई, लेकिन आपको ना बैड फील होगा, चीजें पड़ी हुई, वो इधर हटाए जगह, यहाँ इधर बैठ जाए, तो आपको बुरा लगेगा। हम रिस्पेक्ट देते हैं, आप किसी के घर आने पे या किसी को बुलाने या कहीं भी जाते हैं, आप उसको इज्जत दे रहे होते हैं कि मैं आने की खुशी हुई। अच्छा अब अगला आया तो आपको मिली, तो आपने मैले कुचैले कपड़े पहने, कंघी नहीं की, बिखरे बाल और अजीब, और एक ही मुंह पे जुमला, सुबह से बैठी नहीं, सुबह से बैठी नहीं, अगले को अच्छा लगेगा। इसके बरक्स किसी ने आपको बुलाया शाम के लिए, दो दिन पहले कह दिया, जो भी कहा, पहले तो ये भी एक इज्जत होती है जो कोई किसी को बुलाता है, कोई किसी के खाने का भूखा तो नहीं होता। दूसरी बात है, अब घर में गए, उनके बाहर से ही एहसास हो रहा है घर में घुसते ही कि हर चीज सलीके से, और लग रहा है कि आज फ्रेश सफाई हुई है, आपको एकदम खुशी का एहसास होगा कि इसने मेरी इज्जत की है। फिर आप उन सिस्टर्स को मिले तो देखें माशाल्लाह साफ सुथरे अच्छे ऐसे खुलिए में कि गोया के वो भी कहीं जा रही हैं, आप और भी खुश होंगे कि इसको मेरे आने से खुशी हुई है। साफ सुथरे बर्तन, साफ सुथरा घर, सलीके से रखा हुआ खाना, क्या दिखाता है कि वो खुश है आपको देखकर। तो बस इस नीयत से आप पहने खाए ओढ़े, मैंने खुश करना है, मैंने उसको पहनना है। आप सेलिब्रेशंस में पहने, आप स्टूडेंट्स हैं, सूरह बकरा पूरी हुई, आज शाम आप स्पेशली घर साफ करें, अच्छे कपड़े पहने, और मियाँ साहब को भी होश कर दें, बेगम कहीं जाना है नहीं, क्यों किया, आज मेरी सूरह बकरा पूरी हुई है, मैं इसकी खुशी में। घर में से फ्लॉ की खुशबू आ रही, भी खैर है आज कौन आ रहा है, नहीं आज सूरह बकरा पूरी हुई। अपनी खुशियां मनाएं, आपका बच्चा फर्स्ट आया, आपको खबर मिल गई है, आज शाम आप बेहतरीन नया जोड़ा काम वाला पहने, मैंने अपने बेटे के लिए पहना है। सिर्फ तरजीहात बदल लें, ये कपड़े जो साल हर साल लटके रहते हैं और दूसरी शादी में इसलिए नहीं पहनते कि पहले पहन लिए थे, और दूर वालों की शादी में अब इसलिए नहीं पहनते कि इतने भारी जोड़े पहन के जो लोग हैं कि इसे बड़ा चा चढ़ा। सच बताए मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक जोड़े का नसीब क्या आज के दिन, वो रोता ही होगा, वो आप कहते ना हैंग करना किसको कहते हैं, कट कट सूली पे चढ़े हुए नहीं है हमारे हैंगर्स पे, तो वो अंदर वार्डरोब में कभी आवाज आए तो परेशान ना होइएगा, रोने की आवाज आए तो भी ना, वो जोड़े रोएंगे, वो जैसे वो आपने एक वीडियो देखी होगी कुरान की और सेल फोन की, एक आदमी है तो वो अपना फोन भूल जाता है और साथ ही कुरान भी रखा है, तो वो फोन कहता है ये आज मुझे कैसे भूल गया, तो वो कुरान पाक जो पास रखा है वो कहता है मुझे तो वो रोज ही भूल जाता है, तो फोन कहता है कि वो मुझे कैसे भूल सकता है, मैं तो उसको इतनी खबरें देता हूँ, तो कुरान कहता है मैं तो इस दुनिया की नहीं, मैं तो अगली भी खबरें देता हूँ, तो ये कहता है कि मेरे बगैर तो वो जी नहीं सकता, तो कुरान कहता है मेरे बगैर भी नहीं जी सकता। बहरहाल यही बातें हो रही है, इतने वो आदमी घबराया हुआ आता है और वो जो फोन है वो कहता है देखना अभी वो थोड़ी देर में आएगा मुझे लेने, और वो अंदर आता है और उस फोन को उठाता है, तो फिर कुरान उस वक्त कहता है कि मुझे तो रोज ही छोड़ जाते हो। याद रखिए पहनना ओढ़ना मुश्किल नहीं है, मैं इस टॉपिक को यकीन करें आड़ बनाते हुए वो चीज जो हमारे अब कल्चर में इतनी आम है और इंतहाई ना समझी के उसको पेश करना अपना फर्ज समझती हूँ। किसी ने कहा कि पहले जेवर बहुत बनता था, शादियों में सबसे महंगी चीज जेवर होती थी, अब कपड़े हैं। देखिए ना 1 लाख में मेरा ख्याल है आज भी 1.25 तोले का सेट आ जाता है ना, और पहले दौर में लोग जेवर बनाते थे कि चलो जब मुश्किल आएगी काम आ जाएगा, जो भी कहानियां थी, मैं तो इसको भी इतना नहीं समझती, बाहर ये होता था। और अब जेवर की आज शौकीन नहीं रही बच्चियां, और खास तौर पे गोल्ड, और अब वो कहते बस डायमंड दे दें, ये नहीं कि छोड़ते हैं डायमंड ले लेंगे। लेकिन अब एक जोड़ा जो रियली एवरेज सूट 50,000 का तो है ना, ये एवरेज है कम से कम। और अब ये भी वो पूछते हैं पहले ही कि आप लड़के की कौन है, माँ है, बहन है, बेटी, ताकि उस हिसाब से खाल खींचे आपकी। और जोड़ा जिस दुल्हन का है तो वो इतना महंगा है, और अगर वो पार्टी ड्रेस बन गया तो उसको सस्ता कर देते हैं। आप देखिए कि एक शादी पे अमूमन कम से कम 3 जोड़े तो बनते हैं ना हमारे कल्चर में। अब 3 जोड़ों की टोटल एवरेज प्राइस आप लगा लें 1 लाख रुपए, 2 लाख, सॉरी 2.5 लाख। जी आप भी बोल दें 2 या 2.5 लाख, इन्होंने कहा है 2 को मान लेते हैं। 2 लाख के 3 जोड़े आपने अपने इस तन पे, इस बदन पे डाले और आपको वो मिले, आप क्या होगा उसके बाद? सोचने की बात है हम किधर जा रहे हैं। मुझे कुरान की एक आयत बड़ी याद आती है, जब मैं ऐसी फजूल खर्चियां देखती हूँ, फाई नदस खबून, तुम कहाँ जा रहे हो? आप देखिए वो 1 लाख का जोड़ा आपने सिला के घर में ले आए हैं, सिर्फ अभी पहना नहीं है, पर आपको पसंद नहीं आया, या शादी के बाद आया, कुछ भी हो सकता है, तब भी वो आपसे 1 लाख का कोई नहीं खरीदेगा। घर आई चीज तो बेकार हुई, और अगर एक दफा तन पे लगा के बेचे उसको, 1,000 का भी कोई 10 का भी ले ले तो बड़ी बात है। और हम लाखों रुपए अपनी वार्डरोबों में रखे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि पहन जो लिया, अब एक मौके पे पहनना। अच्छा होता क्या है, जब करीबी शादियां आती हैं तब बनते हैं ऐसे मोटे कपड़े, अच्छे या तो पहन ले 6-10 दफा तो पहने। अब जब 6 दफा पहनने हैं, ये करना है, वो करना है, अभी ये मैं किसी और मुल्क की बात है, मुझे किसी ने बताया कि बेटी पाकिस्तान से शादी का जोड़ा बना के लाई है और सिर्फ 5 का बना है। सिर्फ क्या है? 5, वहां के 5,000 यूरो हैं तो वहां के 5 लाख रुपए हैं पाकिस्तान के। तो मैंने कहा बच्ची को, नसीहत की कि कम से कम इसको 5 दफा तो पहनना, फिर भी तुम्हारा हर पहनावा 1 लाख रुपए का होगा, नहीं बिकेगा। किसी तो हद पे बंदा रुके। और जब पहन के फिर जिन महफिलों की जीनत बनते हैं, फिर माई लात उन ममी लात नहीं है, शोहरत नहीं है, जहरी बात है, खूबसूरती आती है। वो कहते हैं जितना गुड़ डालते जाए उतना रंग आता ही जाता है ना। तो बस ये दुआ करें अपने लिए पहने, अपने मर्दों की हैसियत का पहने, रीयूजेबल बनाए। एक आपने पहन लिया, अब दूसरा पहन ले, तीसरा अपनी शादियों में पहन ले। आप एक कम्युनिटी में आप एक जोड़ा अच्छा सा बना लें। आपके भाई की शादी आपने पहन लिया, मान लेते हैं जी वो जोड़ा सिर्फ भाई की बहन ही पहन सकती, इतना भारी है, तो आपकी दोस्तों में किसी के भी तो भाई की शादी होगी ना, अब उसको मौका दे दें, वो पहन ले, तीसरे को दे दें, चौथे को दे दें। आप कहते हैं कि मदीना में एक जोड़ा होता था और सारी दुल्हनें उसको पहनती थी, हजरत आयशा ने भी अपनी रुख्सती के वक्त किसी का उधार जोड़ा पहनना था। और हम कहते हैं गोरे देखो ये उधार कपड़े खरीद के पहनते हैं, लेकिन वो हमसे अकलमंद है। और सबसे बड़ी बात, बाद में वो जान का रोग अलमारियों में, फिर कभी फरनैल डालते हैं तो कभी उसको बचाते हैं तो धूप लगाते हैं तो गर्मी और सर्दी। और बेचारी सासों ने जिन्होंने लाखों लगा के बनाए थे, वो रोती हैं, कहती गले से लगा नहीं देखा ना, कदरी की हद देखिए। तो बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हदों में रखे।